तारा परी अपनी सगाई का गाउन पहनकर बेहद खुश थी। आज उसकी सगाई थी, सो उसे बार बार अपनी माँ, परीलोक की रानी माँ की याद आ रही थी और उसका दिल बार बार उदास हो रहा था। वहीं रानी माँ अपने कुल देवता के कहे अनुसार राक्षस को पत्थर मारने का काम कर रही थी। उसे अपने कुल देवता के कहे अनुसार 3 पत्थर उस राक्षस को प्रतिदिन मारने थे। लेकिन जैसे ही तारा परी ने दिल से अपनी माँ को याद किया, रानी माँ खुद को रोक नहीं पाईं और केवल 2 पत्थर उस राक्षस को मारकर पृथ्वीलोक तारा परी से मिलने आ गईं। रानी माँ ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के मालिक अमित ने मलिका के द्वारा कही गई बातों का सच जानने के लिए उसके नग्न जिस्म पर एक मंत्र पढ़कर फूंका था। अगर मलिका झूठ बोल रही होती तो उसके जिस्म से एक बड़ी बुरी बदबू आनी शुरू हो जाती। अगर मलिका सच बोल रही होती तो उसके जिस्म से एक खुशबू आनी शुरू हो जाती। सो मलिका के जिस्म से कौन सी स्मेल आ रही है ये जानने के लिए वो काली शक्तियों का मालिक अमित मलिका के नग्न जिस्म को बेहद करीब से जाकर सूंघने लगा था। वो चारों ओर से उसे एक पागल कुत्ते की तरह सूंघ रहा था और मंत्र का असर होना शुरू हो चुका था। सो अब मलिका चूंकि सच कह रही थी, उसके जिस्म से एक बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी थी। वो खुशबू सूंघकर अमित पागल हो चुका था और उसका माइंड उस वक्त ब्लॉक हो चुका था। उसे अब केवल कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था केवल एक औरत का जिस्म। बस फिर उसने मलिका को बड़ी ही बेरहमी से बिस्तर पर फेंका था और उस पर टूट पड़ा था। आज वो तारा परी को पाना चाहता था लेकिन वो उसे अपना नहीं पा पाया था, इसीलिए उसने सारी कसर मलिका से निकालने की सोची थी। और वो उस वक्त मलिका के जिस्म पर जितना हो सकता था उतना ही वाइल्ड हुआ था। जगह जगह उसने नोच डाला था उसे, लेकिन जैसे कि अब उसके जिस्म से रूह निकालकर वापस डाली थी सो अब उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ चुकी थीं। मलिका को दर्द तो हो रहा था लेकिन वो दर्द साथ ही साथ मिट रहा था और जहां जहां से अमित उसे नोच रहा था, घाव बना रहा था, मलिका का जिस्म अपने आप उसे ठीक करता जा रहा था। और पूरे 3 से 4 घंटे उसे जी भरकर दर्द देने के बाद मलिका को उसी हालत में छोड़कर काली शक्तियों का मालिक अमित वहां से निकल गया था। अब चूंकि तारा परी को अमन की नजरों में गिराने का प्लान उसका खराब हो चुका था सो अब उसे कुछ ना कुछ नया प्लान बनाकर तारा को उसकी जिंदगी से निकालना था, क्योंकि अगर एक बार तारा की शादी उन दोनों भाइयों से हो गई तो अमित के लिए रक्षक को पैदा होने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूंकि मलिका बेगुनाह साबित हो चुकी थी लेकिन फिर भी अमित उससे अब वो काम नहीं कराना चाहता था। मलिका के जिस्म से खेलकर उसे बेहद सुकून मिलने लगा था, इसीलिए वो अब मलिका को अमन के पीछे नहीं भेजना चाहता था। मलिका को वहां भेजने के बजाय उसने उसे अपनी एक काली शक्ति को अमन के पीछे लगाने का इरादा कर लिया था। सो अमित ने अब सोच लिया था कि अब तारा को अमन की जिंदगी से निकालने का काम वो अपनी दूसरी काली शक्ति को देगा, इसीलिए वो घने जंगल में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर रानी माँ तारा परी से मिलने आ पहुंची थी, क्योंकि तारा परी मन ही मन अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। रानी माँ तारा परी के सामने थी, वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, केवल तारा परी ही उन्हें देख सकती थी। सो जैसे ही तारा परी ने अपनी माँ को अपने ठीक सामने देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उनके गले लग गई। वहीं करिश्मा जी तारा को देखकर हैरान रह गई थीं, क्योंकि उनकी नज़र में वो जिसके गले लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि सामने दीवार पर लगी फूलों की मालाएं थीं। तारा परी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रानी माँ ने कहा, बेटा तू फिक्र न कर, मैं तेरी जिंदगी के हर सफर में तेरे साथ हूँ और अब तू जा, देख तुझे सब देख रहे हैं। मैं तो किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ लेकिन तू सबको दिखाई दे रही है, जा जा जल्दी जा। तारा परी हटने ही वाली थी कि तभी करिश्मा जी वहां आ पहुंची थीं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे इस माला के गले क्यों लग रही हो, करिश्मा जी ने कहा। तब तारा परी अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, वो मैम मुझे बचपन से ये मालाएं काफ़ी पसंद है और जब मैंने एक साथ इतनी सारी मालाएं देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और आकर इनसे लिपट गई। करिश्मा जी तारा परी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। ओहो बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए ढेर सारी फूलों की मालाएं पूरे बंगले में लगा देंगे, बस एक एक करके आप हमें अपनी ख्वाहिश बताते रहना, हम सब पूरी करते जाएंगी, करिश्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा। और तब करिश्मा जी तारा परी को लेकर जाने लगी थी हॉल में, जहां अमन और मान उसका इंतजार कर रहे थे और तारा परी की माँ यानी रानी माँ भी अपनी बेटी के साथ साथ चल रही थी। तारा परी अपनी माँ को देखकर बेहद खुश थी। जैसे ही अमन और मान की नज़र तारा परी पर पड़ी वो दोनों भाई पलक झपकना भूल गए थे। इस वक्त तारा परी किसी हूर से कम नहीं लग रही थी, दोनों बेख्याली से उसे देख रहे थे और दोनों भाई एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे और अब तारा परी को देखकर तो मानो दोनों भाई सांस लेना ही भूल गए थे। तारा परी की नज़र भी उन दोनों भाइयों पर पड़ी लेकिन जो फीलिंग उन दोनों भाइयों के दिल में तारा परी के लिए थी वो तारा परी के दिल में उन दोनों भाइयों के लिए नहीं थी। उसका दिल एकदम सपाट था, वो केवल खाली खाली नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। वेल, करिश्मा जी ने तारा परी को उन दोनों के बीच में खड़ा कर दिया था। और जितने भी वहां जादुई मेहमान थे उन सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था। वहां सभी मेहमान जादुई मेहमान थे। अगर वहां कोई रियल था वो थे केवल अमन मान और करिश्मा जी और तारापरी। तारापरी की माँ रानी माँ भी वहां पर थीं, लेकिन वो भी अदृश्य थीं। और जितने भी आदमी औरत लड़कियां वहां थे वो सब के सब नकली थे। अमन और मान दोनों चोरी चोरी तारापरी को देख रहे थे। वहीं रानी माँ अपनी बेटी को ढेरों दुआएं दे रही थीं और सब कुछ बेहद अच्छे से हो रहा था। तभी करिश्मा जी अपने हाथ में एक थाल लेकर आ गई थी जिसमें सगाई की अंगूठी थी और उन्होंने अमन और मान के हाथों में एक एक अंगूठी देकर बोला, इस अंगूठी को तारा बेटी को पहनाओ। अमन और मान ने एक पल उस रिंग को देखा था जो बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये तारा के लिए ही बनी हो। अमन और मान ने अपनी माँ की ओर इजाजत लेने के लिए देखा और करिश्मा जी के हाँ में गर्दन हिलाते ही वो रिंग उन दोनों ने तारापरी को पहना दी थी। रिंग पहनाते ही सभी जादुई मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दिया था। तारापरी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अमन और मान की अंगूठी पहनाने के बाद करिश्मा जी ने तारापरी की ओर दो अंगूठियां बढ़ा दी थी। तारापरी ने भी सहमति के लिए अपनी माँ की ओर देखा और रानी माँ ने भी हाँ में सर हिला दिया था। तारापरी ने जैसे ही पहली अंगूठी उठाई और अमन को पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, उसी वक्त अमन का पूरा बंगला हिलने लगा था और अचानक से एक तूफान सा वहां आ गया था। तारापरी हैरानी से कभी अमन और मान को देखती तो कभी अपनी माँ रानी माँ और करिश्मा जी को देखती। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक बहुत ही बड़ा भयानक दानव वहां आ पहुंचा था, जिसे देखकर तारापरी की चीख निकल गई थी और जितने भी जादुई मेहमान थे वो सबके सब गायब हो चुके थे। उस दानव को देखकर रानी माँ को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और वो तेज आवाज में तारापरी से बोली, तारा बेटा, ये दानव उस परीलोक के राक्षस का ही एक रूप है जो यहाँ तेरी सगाई रोककर तेरे होने वाले पति को मारने आया है।
लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? वो राक्षस तो मूर्छित है, फिर उसका ये रूप यहाँ पृथ्वीलोक में कैसे आ सकता है? तारापरी अपनी माँ से पूछती है। वो बेटा, जिस वक्त तुमने मुझे दिल से याद किया उस वक्त मैं उस राक्षस को पत्थर मार रही थी, और जब तुमने याद किया उस वक्त मैं उसे दो ही पत्थर मार पाई थी, जबकि हर रोज की तरह उसे पूरे तीन पत्थर मारने थे। एक पत्थर रह गया था और शायद इसी वजह से ये उस राक्षस का दानव रूप बाहर आ गया है, रानी माँ ने समझाया। लेकिन माँ, अब क्या करें, कैसे रोकें इस दानव को? तारापरी चिंतित होकर बोली। तभी वो दानव धीरे धीरे तारापरी की ओर बढ़ने लगा था। तारापरी को उस राक्षस का जुल्म याद आने लगा था और वो डर के मारे कांपने लगी थी। अमन और मान ने देखा कि वो दानव तारा की ओर बढ़ रहा था तो वे दोनों भाई एकदम से उसके सामने जाकर खड़े हो गए थे। तारापरी ने उन दोनों के हाथ पीछे से पकड़ लिए थे और अपना सिर उन दोनों की कमर में छुपा लिया था। वहां बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था और सब कुछ बिखरता सजा रहा था। करिश्मा जी ने उस दानव से निपटने के लिए अपना जिन रूप धारण कर लिया था। करिश्मा जी का कद भी उस दानव के जितना बड़ा और भयानक हो गया था और वो उस दानव से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनका हर एक वार खाली जा रहा था। वो दानव तो वहां तारापरी को लेने के लिए आया था। रानी माँ खुद को कोसने लगी थी, क्यों उसने उस राक्षस को वो तीसरा पत्थर नहीं मारा था? क्यों बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो पृथ्वी लोक पर खींची चली आई थी? ये सब मेरी लापरवाही से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी रानी माँ तारापरी से कहती है, बेटा, इस मुसीबत से हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परिस्तान के कुल देवता हैं। तब तारापरी मन ही मन में अपनी माँ से बोली, हाँ माँ, आप जल्दी से परीलोक जाइए और इस दानव को खत्म करने का रास्ता निकालिए। ठीक है बेटा, तब तक तुम यहाँ संभालने की कोशिश करो। ठीक है माँ। ऐसा कहते ही रानी माँ परीलोक के लिए निकल जाती है।